दिन भर 4 अक्टूबर दिन शुक्रवार, मैं हूं वात्सल्य राय। महाराष्ट्र में बीजेपी कांग्रेस के लिए परेशानी, पार्टी नेताओं के बागी तेवर, बीजेपी में टिकट कटने से कई दिग्गज नाराज, हाईकमान पर बरसे कांग्रेस के निरुपम।
मुंबई में जिस तरीके से कैंडिडेट फाइनलाइजेशन हुआ है, 3-4 सीटें छोड़ दीजिए तो शायद हर जगह हमारी जमानत जब्त।
एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से राहत।
कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक गिरफ्तार से राहत दे दिया, तब तक कोई भी पुलिस गौतम नवलखा को अरेस्ट नहीं कर पाएगा।
और विवेचना में रेहान फजल के साथ बेगम अख्तर की बात।
सुबह जब हुई और भोपाल आया, कहलेंगे बिटिया वो गजल दी थी उसने, शकील ने जा देखो, निकाला बैग, खोला उसमें से पर्चा निकाला, पढ़ा उसको, देखा, उसके बाद कहलेंगे वो बाजा निकालना, छोटा सा बाजा था।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। मुंबई कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में उनको नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि मुंबई में 3-4 सीटें छोड़कर कांग्रेस सारी सीटें हारने जा रही है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में अभियुक्त बनाए गए सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। इस मामले में उनके अलावा 4 अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ता भी अभियुक्त हैं। इससे पहले नवलखा अपने खिलाफ हुई FIR को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे, जहां उनकी याचिका रद्द कर दी गई थी। भारत प्रशासित कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ आज जुमे की नमाज के बाद श्रीनगर के सौरा में विरोध प्रदर्शन हुए। इनमें पुरुष, महिलाओं समेत बच्चों ने भी भाग लिया। इस प्रदर्शन में 4-13 साल की उम्र के बच्चों ने भाग लिया। पुलिस इस इलाके में दाखिल नहीं हो पाई क्योंकि लोगों ने सड़कों को बंद कर रखा था और कई जगहों पर गड्ढे खोद दिए थे। बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर ने कुछ प्रदर्शनकारियों से बात की।
था उसको इलीगली तौर पर उन्होंने रिमूव किया, तब से लेकर यहाँ, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि पूरे जम्मू कश्मीर को एक मिलिटराइज जोन बनाया गया है, कहीं पे भी किसी को ना बोलने की इजाज़त है, ना प्रोटेस्ट करने की इजाज़त है। इंडिया डज नॉट वांट टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू।
कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर। इराक में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसा की देश के सबसे बड़े शिया धर्मगुरु अयातुल्ला अली अल सिस्तानी ने निंदा की है। इस दौरान 30 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अयातुल्ला ने प्रदर्शनकारियों के साथ सहानुभूति दिखाई है। लोगों ने बेरोजगारी, खराब सार्वजनिक सेवाओं और बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने कहा, सरकार सुधार की मांग का जवाब देने में नाकाम रही है और देरी होने से पहले उसे कुछ करना चाहिए। इससे पहले इराक के प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मदही ने कहा था कि उनका कार्यकाल अच्छा रहा है और उनके पास देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई जादू नहीं है। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा, आदिल अब्दुल मदही का वादा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है और आज वे हम पर गोलियां बरसा रहे हैं। आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उन्होंने ये बैरिकेड लगाए हैं और बीती रात से बंदूकधारी बैठे हुए हैं। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो केवल जनता के लिए हो और बेरोजगारी खत्म करे। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो भ्रष्टाचार न बढ़ाए। ये थे इराक के प्रदर्शनकारियों के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हांगकांग में मुखौटा पहनने पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने सड़कों को बंद कर दिया है और शॉपिंग मॉल्स के बाहर इकट्ठा होकर हांगकांग के लोगों के विरोध जैसे नारे लगाए। एक बीबीसी संवाददाता ने बताया कि लोग जल्दी कामकाज छोड़कर मुखौटे खरीदकर प्रदर्शन में शामिल हुए। इससे पहले हांगकांग की शीर्ष नेता कैरी लेम ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए औपनिवेशिक युग का आपातकालीन कानून लागू करते हुए मुखौटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये कानून शनिवार से लागू होने वाला था, जिसमें गिरफ्तारी और 1 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। बीबीसी समाचार।
दिन भर की खबरों के साथ मैं हूँ वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। नाराजगी है और अब खुलकर इजहार भी हो रहा है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 21 अक्टूबर को मतदान होना है और आज नामांकन का आखिरी दिन था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं ने आखिरी दिन नामांकन किया, लेकिन आज के ही दिन को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी पार्टियों से नाराजगी जाहिर करने के लिए भी चुना। भारतीय जनता पार्टी ने चार बड़े नेताओं एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, प्रकाश मेहता और राजपुरोहित को टिकट नहीं दिया है। खड़से की बेटी को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन बाकी नेताओं को इस तरह संतुष्ट करने की भी कोशिश नहीं की गई है। इसे लेकर उनके समर्थकों ने नाराजगी दिखाई। उधर कांग्रेस के बड़े नेता संजय निरुपम ने भी बगावती तेवर अपना लिए हैं। संजय निरुपम मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने सीधे कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके करीबियों पर निशाना साधा। संजय निरुपम ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं।
सिस्टमेटिक फॉल्ट हो गई है कांग्रेस पार्टी में, अगर इससे नहीं निकलेंगे तो पार्टी का और भयंकर नुकसान होगा। किसी एक व्यक्ति को, चूंकि संजय निरुपम को या राहुल गांधी से जुड़े किसी व्यक्ति को किल करना है, उसको बताना है कि तुम महत्वहीन हो, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए बगैर सोचे समझे विचार किए ये फैसला किया गया। और इसलिए मैंने अनाउंस किया है कि मैं चुनाव प्रचार से दूर हूं। मुंबई में जिस तरीके से कैंडिडेट फाइनलाइजेशन हुआ है, 3-4 सीटें छोड़ दीजिए तो शायद हर जगह हमारी जमानत जब्त। मुझे नहीं लगता अभी मुझे पार्टी छोड़नी चाहिए, लेकिन अगर ये हरकत चलती रहे, यूं ही चलता रहा, तो शायद बहुत लंबे समय तक हम पार्टी में नहीं रह पाए।
ये थे संजय निरुपम। महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है और नेताओं के बागी तेवरों से ज्यादा दिक्कत किस पार्टी को हो सकती है, ये बताने के लिए फिलहाल स्टूडियो में मौजूद है बीबीसी मराठी के एडिटर आशीष दीक्षित। जी आशीष, स्वागत है आपका। हमने संजय निरुपम की आवाज अपने श्रोताओं को सुनाई, बीजेपी के नेताओं की आवाज उस तरह से मुखर नहीं है। क्या चल रहा है? नामांकन का आखिरी दिन, दोनों पार्टियों के बड़े नेता जिन पर बड़ा दारोमदार था वो सड़क पर नजर आ रहे हैं।
बीजेपी और शिवसेना को मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना का टिकट मिले ये बहुत सारे लोगों की इच्छा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस बार बीजेपी और शिवसेना फिर से जीत सकती है, और इसीलिए शिवसेना के काफ़ी लोगों ने बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी के काफ़ी लोगों ने शिवसेना के खिलाफ आज नामांकन दाखिल किया है। पर थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पहली बार उनकी साझा
प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी।
और उसमें उन्होंने कहा कि हम ये जो बागी है इनको अगले दो दिनों में संभाल लेंगे, ऐसा उन दोनों ने तो कहा है, पर उनके लिए बहुत मुश्किल होगा।
लेकिन संभालेंगे किन नेताओं को? इन्होंने कुछ नेताओं को तो जैसे एकनाथ खड़से की बेटी को टिकट दिया, बाकी नेता जो हैं चार बड़े नेता विनोद तावड़े, प्रकाश मेहता, राजपुरोहित, उन्हें कैसे मनाएंगे? उनके समर्थक तो सड़क पर आ गए, जिनको टिकट मिला है उनके साथ मारपीट शुरू हो गई है।
एक जगह पे उनके समर्थक सड़क पे आ गए हैं, पर बाकी जगह पे तो वो चुपचाप बैठे हैं, जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि इतने बड़े नेताओं के जो सिटिंग मिनिस्टर हैं उनके टिकट कट किए जाते हैं और वो कहते हैं कि हम सोचेंगे कि हमारा टिकट क्यों कट किया गया। विनोद तावड़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बगावत वगैरह करेंगे, लेकिन कोई बगावत करने की मूड में इसलिए भी नहीं है क्योंकि बीजेपी अभी काफ़ी स्ट्रांग पोजिशन में है और उन्हें इस बात का भी डर है कि इस बीजेपी के खिलाफ, इन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ अगर बगावत करेंगे
तो उसको आप कैलकुलेशन पहले कर चुके हैं। कांग्रेस में ऐसे कैलकुलेशन की शायद फिलहाल जरूरत नहीं है,
फिलहाल जरूरत नहीं, और इसीलिए संजय निरुपम जो चाहे वो बोल सकते हैं
जी। तो कांग्रेस में आपको क्या लग रहा है? बस मैं एक आखिरी छोटा सा कमेंट आपका जानना चाहूंगा।
कांग्रेस की जो कंडीशन है महाराष्ट्र में बहुत खराब है, और संजय निरुपम की बात करें तो मुंबई कांग्रेस में तो बहुत ही, मतलब उन्होंने ही खुद कह दिया है कि 2-4 जगह छोड़ के सब जगह डिपॉजिट जब्त हो जाएंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस की सचमुच में सिचुएशन बहुत खराब है।
और कांग्रेस के किसी बड़े नेता का कोई बयान इसके बाद आया भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आशीष जी इस पूरे अपडेट के लिए।
थैंक यू।
आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक्टिविस्ट गौतम नवलखा की याचिका पर सुनवाई की। उनके खिलाफ बीते साल महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की हुई है। नवलखा ने इस रिपोर्ट को निरस्त कराने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या हुआ, मैंने ये सवाल किया अपने सहयोगी सुचित्र मोहंती से।
गौतम नवलखा कल सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाए थे, आज सुनवाई हुई। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी गौतम नवलखा की तरफ से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में और ये सबमिशन दिया सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने किसी तरह से वायलेंस को एडवोकेट नहीं किया, किसी तरह से प्रोपागेट नहीं किया है, इन किसी भी फॉर्म में प्रोपागेट नहीं किया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो वकील थे निशांत खतनेश्वरकर, उनका ये कहना था कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, पर्याप्त मटेरियल है ये पुख्ता करने के लिए वो इलीगल काम में और इस तरीके के काम में माओइस्ट के काम में व्यस्त है।
तो उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा?
तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बोला कि अगले तारीख अक्टूबर 15 तारीख को जब सुनवाई होगी तो आपके पास जो भी सबूत है, जो भी एविडेंसेस है, डॉक्यूमेंट्स है, तो वो सब बंद लिफाफे में आप हमें दे दीजिए। मैं ये भी बता दूं, गौतम नवलखा एक रिनाउंड जर्नलिस्ट है, एक रिनाउंड ऑथर है, बहुत सारे किताबें लिखे हैं, अमर्त्य सेन के साथ उनके भी किताब उन्होंने लिखा है।
क्या कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी से राहत दे दी है?
जी देखिए, कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक गिरफ्तार से राहत दे दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जब अगली सुनवाई अक्टूबर 15 तारीख को होगी तब तक ही कोई भी पुलिस गौतम नवलखा को अरेस्ट नहीं कर पाएगा, उनको तब तक फिलहाल राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा।
ये थे सुचित्र मोहंती। गौतम नवलखा को फिलहाल राहत मिल गई है। ये केस इस वजह से भी चर्चा में है कि नवलखा की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने मना कर दिया। क्या है पूरा मामला बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता सलमान रावी।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच के सामने शुक्रवार को शुरू हुई। बहस के दौरान अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि गौतम नवलखा को 15 अक्टूबर तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई उसी दिन सुनिश्चित की है। इस बीच कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से यह भी कहा है कि वो सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए जिसमें गौतम नवलखा के माओवादियों से संबंध होने की बात कही गई है। गौतम नवलखा सहित 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया था। इनमें वरावरा राव, अरुण फेरेरा, वीरन गोंसाल्वस और सुधा भारद्वाज शामिल हैं। गौतम नवलखा की तरफ से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि नवलखा के माओवादियों के साथ कोई संबंध नहीं है और वो किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हैं। हालांकि अदालत के निर्देश से गौतम नवलखा को राहत जरूर मिली, मगर जिस तरह इस मामले से एक एक कर 5 जजों ने खुद को रिक्यूज यानी अलग कर लिया, उसने लोगों के बीच बहस जरूर छेड़ दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता सूरज सिंह का कहना है कि अगर किसी मामले से कोई न्यायाधीश खुद को अलग कर लेते हैं तो उन्हें इसकी वजह भी बतानी चाहिए।
ये ऐसा रेक्लूज करते समय रीजन तो देने चाहिए, बिकॉज वन रीजन में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यू सपोज एज ए लॉयर, एज ए जज आपने कभी रिप्रेजेंट किया हो, जो रीजन होते हैं रेक्यूजल के वो ये होते हैं दैट देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इन द सेंस कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि लोगों को नजर भी आए। तो ये नहीं कि एक्चुअल में बायस है कि नहीं है, बल्कि लाइकलीहुड ऑफ बायस जो है पक्षपात का किसी तरह का लोगों को वो भी ना लगे, एक्चुअल में है कि नहीं है उसकी आशंका भी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन जजों के रिक्यूज करने के मामले को लेकर राय बटी हुई नजर आई। पूर्व न्यायाधीश पीबी सावंत कहते हैं कि किसी भी जज के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती।
जज कैन रिफ्यूज टू हियर विदाउट गिविंग एनी रीजन, देयर इज नो कंपल्शन ऑन हिम टू गिव अ रीजन, वी कांट एंटर द।
जस्टिस सावंत कह रहे थे कि कोई भी जज किसी भी मामले को सुनने से इनकार कर सकता है, जज को इसका कारण बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हम जजों की निजी जिंदगी में तांग झांक नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई कारण रहा हो जिससे जजों ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया हो। वो ये कह सकते हैं कि हम कोई कारण नहीं बताना चाहते। ये थे रिटायर्ड जस्टिस पीबी सावंत के शब्द। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यों वाली ये खंडपीठ मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर से शुरू करेगी। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी इंडिया बोल।
महात्मा गांधी के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता गोडसे अमर रहे का नारा। रीवा में महात्मा गांधी की अस्थियां चोरी होती हैं और गांधी के लिए लिखा जाता है गद्दार। गोडसे को देशभक्त बताने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी की सांसद बन जाती हैं। गांधी की 150वीं जयंती पर उनके हत्यारे का गुणगान क्यों? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 5 अक्टूबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब विवेचना। भारत में बहुत कम कलाकारों को इतना सम्मान मिला है जितना बेगम अख्तर को। शास्त्रीय संगीत पर उनकी पकड़, उर्दू शायरी की समझ, गजब की आवाज और जबरदस्त गायकी का अब तक कोई सानी नहीं मिलता। बेगम अख्तर की 105वीं जयंती पर उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रसंगों को याद कर रहे हैं रेहान फजल।
जब भी बेगम अख्तर के चाहने वाले उनकी ये गजल सुनते थे, वो एक दूसरी ही दुनिया में चले जाते थे। वहां सिर्फ एक ही चीज माने रखती थी, उनकी हीरे की नाक की लौंग की चमक और उनकी अद्वितीय आवाज। किस्सा यह है कि एक बार उनकी मां मुश्तरी बेगम उन्हें बरेली के पीर अजीज मियां के पास लेकर गईं। पीर ने उनसे अपनी गजलों की किताब खोलने को कहा। उन्होंने जिस पन्ने पर हाथ रखा, उस पर बहजाद लखनवी की ये गजल लिखी थी। पीर ने कहा कि अगली रिकॉर्डिंग में इस गजल को सबसे पहले गाना। बेगम अख्तर ने यही किया और पूरे भारत ने उन्हें हाथों हाथ लिया। 5 फुट 3 इंच लंबी बेगम अख्तर हाई हील की चप्पलें पहनने की शौकीन थी। यहां तक कि वो घर में भी ऊंची एड़ी की चप्पलें पहना करती थी। घर पर उनकी पोशाक होती थी मर्दों का कुर्ता, लुंगी और उससे मैच करता हुआ दुपट्टा। उनको खाना बनाने का भी बहुत शौक था। शांति हीरानंद याद करती हैं।
खाना बना लेती थीं, सिलाई कर लेती थीं, गोटा वोटा टाक लेती थीं दुलाइयों पे। बहुत अच्छा काम करती थी, उनको शौक था। मुझे याद है सिगरेट मुंह में दबा हुआ और वो बना रही, मुर बना रही, खास खास मौक़ों पे। तब फिर वो जो खाना बनाना होता था ना, वो एक पूरा एक फेस्टिवल सा होता था। उसमें नए बर्तन, नया चूल्हा, नया ये, नया घी का डब्बा, नया फलाना ना। अरे खाना 4 बजे से पहले जो तैयार हो जाए।
महान सरोद वादक अमजद अली खां को बेगम अख्तर के साथ कई बार संगीत समारोहों में भाग लेने का मौका मिला था। पहली बार उन्होंने उन्हें कलकत्ता में गाते सुना था। उनके गाने की खासियत थी कि वो गाते समय हमेशा मुस्कुराती रहती थी। अमजद अली खां अपनी किताब मास्टर ऑन मास्टर्स में लिखते हैं,
1970 या 71 की बात है, रेडियो कश्मीर ने हम दोनों को श्रीनगर आमंत्रित किया। उनसे उम्र में छोटा होने के कारण मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मुझे पहले बजाने दिया जाए। ये सुनते ही उन्होंने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, ये गुस्ताखी मैं नहीं कर सकती। जब परफॉर्म करने की बारी आई तो मैंने सोचा कि मैं दौड़कर उनसे पहले स्टेज पर पहुंच जाऊं, लेकिन बेगम साहिबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और खुद मंच पर पहुंच गईं। उन्होंने 4 गजलें गाईं और श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। जब मेरी बारी आई तो मैंने देखा कि बेगम साहिबा पहली ही लाइन में बैठी हुई हैं। मैंने सरोद एक तरफ रखते हुए कहा, आपको सुनकर मैं सारे राग और रागनियां भूल गया हूं, आप होटल जाइए और आराम फरमाइए। बेगम ने जवाब दिया, लीजिए, क्या हम आपको सुन ही नहीं सकते, बिस्मिल्लाह कीजिए।
बेगम अख्तर ने उर्दू के सभी महान शायरों के साथ साथ उस समय के उभरते हुए शायरों को भी गाया। जिगर मुरादाबादी भी उनमें से एक थे। बेगम अख्तर की शिष्या शांति हीरानंद कहती हैं कि जिगर के लिए उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था और वो उनसे खुलेआम फ्लर्ट करती थी।
जिगर साहब आते थे रहने के लिए वहाँ, उनकी बेगम भी आ जाती थी, मोटी सी, लाल लाल बाल, उनके गरारा पहने हुए, काली सी, खुद तो बहुत ही बदसूरत थे। अलग से कमरे में वरंदा अलग, वो सब कुछ उसमें रहते थे। वो बहुत खातिर करती थी और वो गजलें भी देते थे इनको लिख। जिगर की गजल किसका ख्याल कौन सी मंजी मुझे बहुत अच्छी लगती। इसका भी एक किस्सा है कि जिगर साहब ने उनको ये गज़ल दी, उन्होंने धुन बनाई दरबारी में और गाया, तो जिगर साहब जो थे उनको तो दौरा पड़ गया उसी वक्त। वो सब गाना वाना रुक गया, वो अस्पताल पहुंचाए गए। एक दफ़ा कहने लगी उनसे कि मियाँ, अगर हमारी आपकी शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता, आपकी शायरी और हमारी आवाज़। तो कहने लगे, बीबी अगर उल्टा होता तो। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे। वही है जिंदगी अपनी, जिगर ये हाल है अपना। के जैसे जिंदगी से
जिंदगी कम हो न बेगम अख्तर चेन स्मोकर थी। प्रोफेसर सलीम किदवई उन्हें नजदीक से जानते थे और उनके आखिरी दिनों में उनके बहुत करीब थे।
दिल्ली में इन्होंने हमसे कहा सिगरेट पीते, हमने कहा जी हाँ पीते, मगर आपके सामने नहीं पियेंगे। हमारे वालिद इंटेंशन के मेरे अस्पताल को देखने आई तो बहुत बड़ा बास्केट फलों की बहुत अच्छी तरह से अरेंज्ड और बीच में चार डिब्बी सिगरेट हमारे लिए, वहाँ उनके साथ रह रहे थे हॉस्पिटल में। तो इस किस्म के बहुत लाइवली इंसान थी।
सिगरेट से जुड़ा ही एक दिलचस्प किस्सा शांति हीरानंद बताती है। एक बार वो ट्रेन से महाराष्ट्र से गुजर रही थी, रात को अचानक उनकी सिगरेट खत्म हो गई।
रात के 2 बजे कह लेंगे विटन वो सिगरेट खत्म हो गया, अब कैसे करें, कैप्टन पिया करते नहीं। तो एक छोटे स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो कह लेंगे देखो है कोई दुकान, हमने कहा यहाँ तो अंधेरा ही, हट बौका कहेंगी अपने खड़ी हो गई उस जमाने में, और वाकई में अंधेरा था, कुछ था ही नहीं, पर गार्ड खड़ा था पीछे दूर, उसको बुलाया अरे मेरे भैया अरे मेरे, वो दौड़ा दौड़ा उसने सोचा कि कोई परेशानी होगी, कह लेंगे बेटा यहाँ कहीं सिगरेट मिलेगी, उसने कहा कुछ था महाराष्ट्र कहना यहाँ सिगरेट नहीं मिलता, अरे मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे जीते रहे, तुम्हारा ये हो तुम्हारा वो हो, वो बेचारा हक्का बक्का ही रह गया, उसकी झंडियाँ दोनों ले ली, उसकी लैंटर्न पकड़ ली और 200 रुपये उसको पकड़ा दिए। अब वो क्या करता, वो दौड़ा दौड़ा बाहर गया स्टेशन, वहाँ से कहीं पान वान की दुकान होगी, वहाँ से लेके आया सिगरेट, तब उसको इतनी दुआएं दी और तब गाड़ी चली।
ये न थी हमारी
बेगम अख्तर की एक और शिष्या रीता गांगुली कहती हैं कि वो हमेशा कहा करती थीं कि सीखी हुई चीज कभी बेकार नहीं जाती। एक बार रीता गांगुली और बेगम अख्तर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल गोपाल रेड्डी के निमंत्रण पर नैनीताल के राजभवन गई।
नैनीताल का बहुत खूबसूरत झील है, हम बोले अम्मी चलते हैं, हम तो वो तमाम जगह ले गई, इधर उधर घुमाई, मैंने कहा नाव में नहीं चढ़ेंगे। अच्छा उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि उनको पानी से थोड़ा डर था, तो बहरहाल हम जाके बैठे और बैठे तो जो माछी है उसको समझ में आ गया भाई गवर्नर हाउस से झंडे वाला गाड़ी से कोई बैठे हैं। उसके पास एक छोटा सा ट्रांजिस्टर था विच नेचुरली ही वाज वेरी प्राउड ऑफ, बीच झील में जाके उसने बजाया और वो बज रहा था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तुम। तो मैं तो बहुत घबरा गई, मैंने उस माझी को कहा अरे क्या करो हिमाकत बंद करो बंद करो, तुम्हें तो पता भी है कौन बैठी है। अम्मी अचानक बोले क्यों बंद करा रही हो बेटा, वाह 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 क्या आवाज है, क्या नाम है इस लड़के का। मैंने कहा अम्मी ये किशोर कुमार हैं। बोले वाह वाह क्या कहने, क्या ऊपर से तरता तत्ता तररा, ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है और क्या गाया इस लड़के ने। बेटा कभी कुछ भी चीज सुनना जाया नहीं जाता है। उसी दिन शाम को नैनीताल क्लब में एक प्रोग्राम था, गवर्नर साहब ने रखा था, एक मैखाना है बज में जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं, तो उसका तर्ज कुछ और था, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये मैखाना है बज में जम नहीं है यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, यानी चलिया तू तो चलिया, उसको इस्तेमाल कर लिया और लोग झूमने लगे, उनको क्या पता एक्चुअली रेफरेंस क्या है।
शांति हीरानंद बताती हैं कि एक बार जब वो मुंबई सेंट्रल स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना हो रही थीं, तो उनको स्टेशन छोड़ने आए शकील बदायूनी ने उन्हें एक चिट पकड़ाई।
जैसे स्टेशन से गाड़ी अभी जाने ही वाली थी बम्बई से, तो शकील साहब भागते भागते आए, बेगम साहब ये गजल मैंने आपके लिए लिखी है। उनका अच्छा शकील बैग में रख लिया, अब क्या हुआ कि भूल गई, और उनकी आदत ये थी कि वो जब सफ़र करती थी तो उनको ये रहता था कि सारा डब्बा खाली रहे, कोई और दूसरा ना हो, ताकि वो आराम से सिगरेट पी सकें, लेट सकें बेतकल्लुफी से। सुबह जब हुई और भोपाल आया तो भोपाल में उन्होंने चाय मंगवाई, पी कह लेंगे बिटिया वो गज़ल दी थी उसने शकील ने, जरा देखूँ, निकाला बैग کھولا اس میں سے وہ قاب پرچہ نکالا اور پڑھا اس کو دیکھا. اس کے بعد کہنے لگے وہ باجا نکالنا, چھوٹا سا باجا تھا کنورٹ ایسے کنورٹیبل تھا نیچے بیٹھ چھوٹا سا, اس کو نکالا اس پہ انگلیاں انہوں نے پھرائیں اور یہ اے محبت پیدا ہوئی.
اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا, اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا, اے محبت جانے کیوں
نامی سنگیتکار مدن موہن کے لیے بھی بیگم اختر کے من میں بہت سنیہ تھا. بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ انہیں مدن موہن نے ہی ہارمونیم سکھایا تھا. ریتا گانگولی یاد کرتی ہیں.
کوئی بھی گائکہ اس وقت کی ہارمونیم نہیں بجاتی تھی, سارنگی سے ان کی تعلیم ہوتی تھی اور سارنگی کے ساتھ ہی گایا کرتے تھے. بیگم اختر اس زمانے کے ایک ماتر گائکہ جو خود ہارمونیم بجا کے گا لیتی تھی, اور یہ ہارمونیم کی تعلیم ان کو مدن موہن جی نے دی تھی. اور مدن موہن جی کے من میں ان کے لیے بہت عزت تھا. جب بھی وہ جاتی تھیں ان میں ایک دو چار چیزیں تھیں, جیسے کلکتہ جائیں آپ تاج بنگال میں ٹھہرانا چاہیں وہ نہیں ٹھہریں گی, وہ ہوٹل براڈ وے میں ہی ٹھہریں گی. اگر اب وہ بمبئی گئی اور تاج محل ہوٹل میں ان کو روم بکڈ ہے, سویٹ بکڈ ہے, کسی کو اور بھیج دیتی تھی, خود جا کے ساؤتھ سی گرین ہوٹل میں مرین ڈرائیو میں اسی میں رہتی تھی. تو وہاں وہ ہر بار مدن موہن جی آ جاتے تھے اپنا ہارمونیم لے کے, اوپر امی بیٹھتی تھیں اور ان کے پیر کے پاس مدن موہن جی بیٹھتے تھے اور وہ گانا سناتے تھے, اپنی کمپوزیشن سناتے تھے, اور پھر امی کو کہتے تھے سنائیے نا کچھ, بیگم صاحب کچھ سنائیے نا. اور وہ اتنے ذہن ان کا اتنا زبردست تھا مدن موہن جی, اس میں دو چار بار گانے کے بعد ہی ان کے دل و دماغ میں وہ طرز بیٹھ جاتا تھا.
سنگ لے چل ماں کے سوریا ندیا کے اس پار ہمیں سنگ لے چل,
یہ امی گاتی تھی ایک دادرا, اسی کے طرز لے کے
آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے دل کی ہے دھڑکن ٹھہر جا مل گئی منزل مجھے آپ کی نظروں نے سمجھا.
ریحان فضل, بی بی سی دلی.
ویویشنا کے سنگ پر آپ کی رائے کا ہمیں رہے گا انتظار. اور اب کھیل کی خبروں کا اپ ڈیٹ جان لیتے ہیں اندو پانڈے سے. جی,
کھیل خبروں میں ہم بات کرتے ہیں کرکٹ کی. بھارت دکشن افریقہ کے بیچ وشاکھاپٹنم میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ کا تیسرا دن پوری طرح سے دکشن افریقہ کے نام رہا. دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد افریقی ٹیم نے اسکور بورڈ پر 8 وکٹ کے نقصان پہ 385 رن بنا لیے ہیں. متھسوامی اور کیشو مہاراج 2 رن بنا کے ناباد لوٹے. تو اس طرح سے مہمان ٹیم بھارت کی پہلی پاری کے اسکور سے اب صرف 117 رن ہی پیچھے ہے. اور اب بات کر لیتے ہیں رینکنگ کی. تو آج رینکنگ جاری ہوئی ہے ون ڈے بلے بازوں کی رینکنگ میں. وراٹ کوہلی اور بھارتی اپ کپتان روہت شرما پہلے اور دوسرے استھان پہ ہیں, جبکہ بمراہ گیند بازوں کی رینکنگ میں ٹاپ پہ بنے ہوئے ہیں.
بہت شکریہ اندو پانڈے. اور اب چلتے چلتے مکھیہ سماچار بھومیکا رائے سے.
بی بی سی سماچار. ممبئی کانگریس کے نیتا سنجے نیروپم نے آج پریس کانفرنس کر کے پارٹی کے شیرش نیتریتو کو لے کر ناراضگی جتائی ہے. بھیما کوریگاؤں ہنسا معاملے میں ابھیوکت بنائے گئے ساماجک کاریکرتا گوتم نولکھا کی گرفتاری پر سپریم کورٹ نے 15 اکتوبر تک روک لگا دی ہے. بھارت پرشاست کشمیر سے انوچھید 370 ہٹائے جانے کے خلاف آج جمعے کی نماز کے بعد شری نگر کے سورا میں ویروھ پردرشن ہوئے. بی بی سی سماچار.
دن بھر میں آج اتنا ہی. اسٹوڈیو کی کمان تھی راجیش چوہان کے ہاتھ. آپ سے اگلی ملاقات کل صبح 6:30 بجے نمسکار بھارت میں ہوگی. تب تک دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں bbchindi.com پر, جہاں آپ کو سبھی خبروں کا ملے گا اپڈیٹ. واتسلیہ رائے کو فی الحال سبھی ساتھیوں کے ساتھ دیجیے انومتی. نمسکار.